आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
IVF में गड़बड़ी के बाद एक महिला ने दूसरे व्यक्ति के बच्चे को जन्म दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम की घोषणा की, लेकिन चीनी आयात पर टैरिफ को 125% तक बढ़ा दिया। टेनिस में दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहुंचे मोंटी कार्लो क्वार्टर फाइनल में। नमस्कार, साप्ताहिकी में सप्ताह भर की खबरें विस्तार में और मैं हूँ अनीता बरार। एक महिला ने दूसरे व्यक्ति के बच्चे को जन्म दिया जब उसके फर्टिलिटी केयर प्रदाता ने उनके एम्ब्रियोज में गड़बड़ी कर दी। फरवरी में इस त्रुटि का पता चला जब जन्म देने वाले माता पिता ने अपने शेष एम्ब्रियोज को किसी अन्य IVF प्रदाता को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उनके एम्ब्रियोज की संख्या में एक अतिरिक्त एम्ब्रियो भंडारण में रह गया। एक जांच से पुष्टि हुई कि एक दूसरे पेशेंट के एम्ब्रियो को इस जन्म देने वाली माता को हस्तांतरित किया गया था। घटना का पता लगने के एक सप्ताह के अंदर ही इस गलती के बारे में सूचित किया गया। वकील सैम मैसेडन ने चैनल 9 को बताया कि ये गलती गंभीर कानूनी जटिलताएं पैदा करती है।
It's a very complicated situation because she's the birthing mother and she's been looking after the child for 2 or 3 months or whatever. So the question now is whether if it's someone else's egg, can she apply to have the child transferred to her by way of adoption or otherwise? If it's her egg, can the donor, if he knows who he is, make a claim for access at other situations? It's a very complicated area. There's no precedent.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों देशों के लिए उच्च टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की, लेकिन उन्होंने चाइना पर टैरिफ में और वृद्धि की। उन्होंने कहा कि 90 दिनों के दौरान चाइना के अलावा अन्य देशों पर 10% का सार्वभौमिक टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि चाइना के लिए उच्च दर विश्व के बाजारों के प्रति चाइना द्वारा दिखाए गए सम्मान की कमी के कारण है। US ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि उनके अनुसार वर्तमान स्थिति के लिए केवल चाइना ही दोषी ठहराया जा सकता है।
Well, I'm not calling it a trade war, but I'm saying that China has escalated and President Trump responded very courageously to that and we are going to work on a solution with our trading partners.
मिनिस्टर फॉर सोशल सर्विसेज अमेंडा रिश्वर्ट ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के टैरिफ के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी आर्थिक उथल पुथल के लिए अच्छी स्थिति में है। ये तब हुआ जब कोषाध्यक्ष जिम चार्मस ने रिजर्व बैंक ब्याज दरों में नाटकीय रूप से कटौती की उम्मीद जताई। उन्होंने वित्तीय बाजार की भविष्यवाणियों की ओर इशारा किया कि अगर वैश्विक व्यापार अराजकता तेज होती है तो अगले महीने 50 आधार अंकों की कटौती हो सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या कोषाध्यक्ष दरों में कटौती को लेकर उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, मंत्री रिश्वर्त ने चैनल 9 से कहा कि RBA और सरकार ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करने के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे।
Our government has put in the country in the best possible position to weather this global uncertainty with inflation down, low unemployment, interest rates coming down, and of course the biggest budget turnaround in one term of government. So we are in a good position to weather this. Obviously the RBA will get on with its job.
उप विपक्षी नेता सुजन ले ने कहा कि पीटर डार्टन के खिलाफ कथित आतंकी साजिश ऑस्ट्रेलिया में एक नई सामान्य बात नहीं बन सकती। ब्रिस्बेन के एक 16 वर्षीय निजी स्कूल के छात्र पर विपक्षी नेता पीटर डार्टन को निशाना बनाकर कथित आतंकी साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। लेने कथित घटना की निंदा करते हुए चैनल 7 से कहा कि वो डार्टन के परिवार को भी परेशानी की कल्पना नहीं कर सकती।
This is the best country in the world. We're a free, fair, open democracy. We expect this sort of thing to happen overseas, but never here. And when I think about how our courts and our police systems work hard to protect us, I trust they will do the right thing in this case. We can't let this become the new normal in Australia.
पुलिस का आरोप है कि किशोर ने ब्रिस्बेन के उत्तर में डाटन की संपत्ति पर हमले में ड्रोन और घर में बने विस्फोटकों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। ऑस्ट्रेलियाई समाचार पत्र की रिपोर्ट है कि किशोर, जिसका नाम कानूनी कारणों से नहीं बताया जा सकता, उसको फेडरल और क्वींसलैंड पुलिस द्वारा संयुक्त जांच के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस पर बम बनाने के निर्देशों पर शोध करने, विस्फोटक सामग्री का सूत्र खोजने और रसायन परीक्षण करने का आरोप है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पार्टी नेताओं ने फेडरल चुनाव अभियान के पहली नेताओं की बहस में जीवन यापन की लागत के दबाव से निपटने के लिए अपनी योजनाएं पेश की। एंथनी एल्बनीसी और पीटर डाटन से पश्चिमी सिडनी क्षेत्र में 100 मतदाताओं के समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लागत और ऊर्जा बिल राहत के साथ साथ अन्य मुद्दों के बारे में पूछा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे जीवन यापन की लागत से जूझ रहे हैं, तो लगभग आधे दर्शकों ने अपने हाथ उठाए। डाटन से बार बार प्रवासन पर उनके बयानों के बारे में पूछा गया कि वे उन्हें बुरा बनाने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। डाटन का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया को प्रवासन के संदर्भ में गर्व करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में प्रवासन रिकॉर्ड पर है, जो उनके अनुसार आवास जैसे बुनियादी ढांचे पर दबाव डालता है।
So we have to have a managed migration program, and our argument is that you can reduce it from the record level of debt at the moment down by 25% for 2 years, which will create about 100,000 homes, and that will help young Australians get into housing.
Albanese ने कहा कि लेबर पार्टी भी आवास की लागत और उपलब्धता को लेकर चिंतित है, लेकिन उसने पहले ही घरों के विदेशी स्वामित्व पर 2 साल का प्रतिबंध लागू कर दिया है, जो अन्य उपायों के साथ साथ आवास बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
We think that's appropriate at the moment in order to ensure that homes are available for Australians. We want to increase the supply of homes. That's absolutely central to a range of policies that we've put in place, whether it be private rentals, whether it be public and social housing where I grew up, or whether it be home ownership as well.
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि युद्ध विराम समाप्त होने के बाद से इजरायली सेना ने गाजा में 170 मानवीय सहायता मिशनों में से 2/3 से अधिक को अवरुद्ध कर दिया है। इजरायल ने कहा है कि जब तक हमास सभी शेष बंधकों को रिहा नहीं कर देता, तब तक वो गाजा में किसी भी सामान और आपूर्ति के प्रवेश को अनुमति नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि इस इनकार के कारण संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कार्य करने से वंचित हो रहा है।
As we have warned repeatedly, there is no safe place in Gaza. And as we've repeatedly said, civilians must be protected, whether they stay, whether they leave. Those fleeing the fighting must be allowed to do so safely, and they must be allowed to voluntarily return when the situation allows.
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तर में नेटिव टाइटल होल्डर्स ने उच्च न्यायालय में उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उनादा के पास भूमि पर उनके मूल निवासी अधिकार यानी नेटिव टाइटल को मान्यता दी गई है। अरबाना लोगों के एक समूह ने 1993 में अपना पहला मूल निवासी अधिकार दावा दायर किया था और 2012 में उन्हें उनादा के निकट एक विशाल क्षेत्र प्रदान किया गया था। हालांकि एक छोटा क्षेत्र दावे से बाहर रखा गया था, क्योंकि फेडरल न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि समूह ने भूमि के साथ भौतिक सांस्कृतिक संबंध बनाए नहीं रखा था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि फेडरल न्यायाधीश ने मूल निवासी अधिकार अधिनियम के तहत भूमि के संबंध के सिद्धांतों को सही ढंग से लागू नहीं किया। और खेलों में, टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन मोंटी कार्लो मास्टर्स में क्वार्टर फाइनल में आगे बढ़े हैं। एलेक्सी पॉपरिन ने दुनिया के नंबर 7 कैपर रूट को 6-4, 3-6, 7-5 से हराया। इससे पहले एलेक्स डी मिनोर ने डेनियल मेदवेदेव को 6-2, 6-2 से हराया। बीते सप्ताह के मुख्य समाचार साप्ताहिक की समाप्त हुए।
Yeah.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।